परमेश्वर में प्रभु का जीवित वचन सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
नमस्कार श्रोताओं, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। श्रोताओं, जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से यूहन्ना रचित सुसमाचार का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं। हमें विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों और आत्मिक ज्ञान प्राप्त करें। लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
जंजीरों को तोड़ता है, तूफान के रुख मोड़ता है। जंजीरों को तोड़ता है, तूफान के रुख मोड़ता है। यीशु 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 रिश्ता हमसे जोड़ता है, और ना तन्हा छोड़ता है। रिश्ता हमसे जोड़ता है और न तन्हा छोड़ता है। यीशु यीशु मेरा यीशु 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 मेरा यीशु यीशु। जंजीरों को तोड़ता है, तूफान के रुख मोड़ता है। यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु। जब मैं दुआ में तुझको बुलाऊं, तुझको बुलाऊं पास सपने पाऊं। ओ जब मैं दुआ में तुझको बुलाऊं, तुझको बुलाऊं पास सपने पाऊं। बंधन सारे तोड़ता है, रब से हमको जोड़ता है। बंधन सारे तोड़ता है, रब से हमको जोड़ता है। यीशु 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 जंजीरों को तोड़ता है, तूफान के रुख मोड़ता है। यीशु यीशु मेरा ये गहरे खोलता है। यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु जंजीरों को तोड़ता है, तूफान के रुख मोड़ता है। यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु। किसने पुकारा पाया किनारा पकड़े फिर ना छोड़ता है टूटे दिल को जोड़ता है पकड़े फिर ना छोड़ता है टूटे दिल को जोड़ता है यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु जंजीरों को तोड़ता है तूफान के रुख मोड़ता है यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु प्यारा यीशु यीशु ऐसा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूँ कि आप सब कुशल पूर्वक हैं और प्रतिदिन की तरह आज भी परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सबका फिर से एक बार इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। मेरे मित्रों, आज जब हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हैं तो आइए हम पहले परमेश्वर से सहायता मांगे और अपने जीवन में उन आशीषों की मांग करें जो आज मुझे और आपको सिखाना चाहता है। आइए हम सब प्रार्थना करें। प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं आपके सारे आशीषों के लिए जिसे अब तक आपने हमें से प्रत्येक के जीवन में जोड़ा है और आपने फिर से एक बार हमें यह मौका दिया है कि हम आपके जीवित वचन का अध्ययन करें। इस समय जब हम आपके वचन में से सीखते हैं, मनन चिंतन करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, हमारी विनती है कि आप हमें से प्रत्येक को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ की परिपूर्णता दें। पवित्र आत्मा, आप हम सब की सहायता करें ताकि जो भी वचन आज हम सीखते हैं हमारे हृदयों से बातचीत करने पाए। पवित्र आत्मा, आप हमारे शिक्षक हो जाएं, आप हमें तोड़ें मरोड़ें और हमारी सहायता करें ताकि हम उन वचनों को और भी गहराई से समझ सकें, हमारे हृदयों में आपके वचन गहराई से समाने पाए। हम विनती करते हैं पिता परमेश्वर कि जिस रीति से आपने पिछले दिनों में हम सबकी सहायता की है, आज भी आप सहायता करेंगे। हमारी प्रार्थना है उन प्रिय भाई बहनों के लिए जो अपने जीवन से दुखी हैं, निराशा में हैं, परेशानियों में हैं, तकलीफ और कष्ट में हैं, आप उनके भी सुधे लीजिए ताकि वे भी आपसे प्यार कर सकें, आपको अपना प्रभु कहकर पुकार सकें और इस बात को जानने पाए कि आप उनकी चिंता करते हैं, आप उनसे प्रेम करते हैं, आप उनके हर एक जरूरतों को समझते हैं। हाँ प्रभु, जितने इस समय हमारे साथ प्रार्थना कर रहे हैं, प्रत्येक को आप स्पर्श करें और उन्हें छुटकारा दें, चंगाई दें, अपनी महिमा लें। इस समय हर एक को आपके हाथ में सौंप देते हैं। इस अध्ययन पर आपकी आशीष मांगते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्र, पिछले अध्ययन में हम देख रहे थे कि यीशु मसीह अपने शिष्यों से कह रहा था कि वह थोड़ी देर बाद उनके साथ नहीं होगा, वह चला जाएगा। इस पर शिष्य दुखी थे। यीशु ने उनसे कहा कि वह उन्हें अकेला नहीं छोड़ेगा, वह पवित्र आत्मा उनके बीच में भेजेगा और वह उनका सहायक होगा। उसे तो जाना ही था क्योंकि उसका कार्य पूरा हो चुका था। वह अनादि अनंत से आया था और वहीं लौट रहा था, परंतु शिष्यों की समझ में अभी तक उसकी मृत्यु एवं कष्ट उठाने की बात समझ में नहीं आ रही थी। अब हम आगे देखते हैं आज के इस अध्ययन में, जिसे हम पढ़ेंगे योना रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसके 29 से 30 पद में लिखा हुआ है। उसके चेलों ने कहा, देख अब तो तू खोल कर कहता है और कोई दृष्टांत नहीं कहता। अब हम जान गए कि तू सब कुछ जानता है और तुझे प्रयोजन नहीं कि कोई तुझसे पूछे। इससे हम प्रतीति करते हैं कि तू परमेश्वर से निकला है। मित्रों, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यह तो स्पष्ट है कि प्रभु यीशु देहधारी परमेश्वर है। शिष्य भी इस बात को समझ गए थे कि वह परमेश्वर पिता के पास से आया था और वह मसीह है, संसार का उद्धार करता। परंतु उसका कष्ट और मृत्यु, उसका पुनरुत्थान और उसका स्वर्ग रोहन अर्थात स्वर्ग पर उठा लिया जाना उनकी समझ से परे था। क्या आज 2010 वर्ष बाद हम इन बातों को समझते हैं? शायद हम में से कई आज भी नहीं समझते हैं। योहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसके 31 और 32 पद में हम पढ़ते हैं, यह सुन यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम अप्रतीति करते हो? देखो वह घड़ी आती है वरन आ पहुंची है कि तुम सब तितर बितर होकर अपना अपना मार्ग लोगे और मुझे अकेला छोड़ दोगे, तो भी मैं अकेला नहीं क्योंकि पिता मेरे साथ है। यहां पर ध्यान दीजिए, वह समय आने वाला था जब वे सब उसे छोड़कर तितर बितर हो जाएंगे, परंतु यीशु ने कहा कि वह अकेला ना होगा, पिता परमेश्वर उसके साथ था। पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया को अपने दूसरे पत्र में लिखता है 5 अध्याय उसके 19 पद में कि परमेश्वर मसीह में उपस्थित संसार का अपने से मेल करा रहा था। यह एक महान सत्य है क्योंकि क्रूस पर प्रभु यीशु ने पिता को पुकार कर कहा, जिसे हम मार्कुस 15 अध्याय उसके 34 पद में पढ़ते हैं, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? यह भजन संहिता 22 का संदर्भ है। इसका उत्तर भी उसी भजन में पद 3 में मिलता है कि परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। मेरे मित्रों, प्रभु यीशु हमारे लिए पाप बनाया गया। त्रिएक परमेश्वर उस क्षण चीरा गया था जैसे मंदिर का पर्दा फटा था, परंतु परमेश्वर प्रभु यीशु में संसार से मेल कर रहा था। मित्रों, यह एक ऐसा भेद है जिसे मानव बुद्धि से ग्रहण नहीं किया जा सकता है। संपूर्ण अनंत काल हम प्रभु की इस मृत्यु का, जो उसने हमारे स्थान पर सही अर्थात हमारे बदले पर सही, कोई न कोई नया एवं अद्भुत भेद समझते रहेंगे और हर बार नए रूप एवं नई समझ में उसे दंडवत करेंगे। यूहन्ना 16 अध्याय उसके 33 पद में हम पढ़ते हैं, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाड़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। वह अपने बातों के अंत में कहता है, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। शांति आपको कहीं नहीं मिलेगी। शांति का एकमात्र स्रोत प्रभु यीशु मसीह है, क्योंकि आज संसार में बहुत से लोग हैं जो शांति की खोज में दर दर भटकते हैं, लेकिन अभी तक उन्हें शांति नहीं मिला है। संसार में तुम्हें क्लेश होता है। यीशु की बात कैसी सच्ची है। संसार में शांति नहीं है, यह बात बिल्कुल सच है, परंतु उसने संसार पर जय पाई है और वह जय हमें प्राप्त है जब आप और मैं उससे पहचान बनाकर उसकी घनिष्ठता में रहते हैं। तब हमें मन में परमेश्वर की शांति प्राप्त होती है। संसार तो क्लेश ही देगा, परंतु हमारा मन शांत रहेगा, आनंद से भरा रहेगा। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि तुम्हें शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाड़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। मेरे मित्रों, यह क्या ही अद्भुत और बड़ी बात है कि परमेश्वर में ही हमें शांति मिलता है। आज बहुत सारे लोग मनोरंजनालय में जाते हैं और ऐसे सभाओं में और क्लबों में जाते हैं, ऐसे क्लब में जाते हैं जहां पर वे शांति को ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें शांति नहीं लेकिन दुख और क्लेश ही प्राप्त होता है। आज यदि आप भी इसी प्रकार के शांति की खोज में हैं, तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हें शांति सिर्फ मुझ में मिल सकती है, क्योंकि उसका वचन यह भी कहता है कि वह शांति का राजकुमार है। प्रिय मित्र, यहां पर अध्याय 16 समाप्त होता है। अब हम बाइबल का सबसे अधिक अद्भुत अध्याय आरंभ करते हैं, अध्याय 17, जो बाइबल में विहित सबसे लंबी प्रार्थना है। पढ़ने में तो केवल 3 मिनट लगेंगे, परंतु यह सार्वजनिक प्रार्थना के लिए बहुत अच्छा उदाहरण है। मैं स्पष्ट कहता हूं कि छोटी प्रार्थना और उसमें सब मुख्य विषय लंबी प्रार्थनाओं से अधिक प्रभावी होती है। मेरे प्रिय मित्र, यीशु के इन अंतिम उपदेशों की चरम सीमा इस प्रार्थना में है। इस अध्याय के बारे में बड़े लोगों के विचार हैं। मैथ्यू हेनरी कहते हैं, यह सर्वाधिक विशिष्ट प्रार्थना है जिसमें इस पृथ्वी पर प्रचारित परिपूर्ण एवं शांतिदायक उपदेश है। मार्टिन लूथर कहते हैं, सबसे अधिक उत्साह से पूर्ण प्रार्थना, इसमें प्रभु अपना मन की गहराई व्यक्त करता है जो हमारे और स्वर्गीय पिता के संबंध में है। यह सच्चे दिल से है और अति सरल है, या इतनी गहराई में है कि इसे समझना कठिन है। फिलिप मेलाखतन, जो धर्म सुधारक हैं, कहते हैं, पिता से की गई पुत्र की यह प्रार्थना वह वाणी है जो न तो पृथ्वी पर और न ही स्वर्ग में कभी सुनी गई, जो इस प्रार्थना से अधिक पवित्र, फलदायक और उच्च एवं दीन हो। जान क्लोनस इस प्रार्थना को लगातार दोहराते रहते हैं। जब वह मरणशैया पर थे, तब उनकी पत्नी ने पूछा कि वह बाइबल में से क्या पढ़े, तो उन्होंने उत्तर दिया, यूहन्ना अध्याय 17 पढ़ो, जहां मैंने सबसे पहले अपना लंगर डाला था। इंग्लैंड के राजा हेनरी अष्टम के समय डॉक्टर फिशर ने शहीद होते समय यही प्रार्थना पढ़वाई थी। मेरे मित्रों, यह हमारे लिए महायाजक की मध्यस्थता है, यह हमारे लिए स्वर्ग में पिता और पुत्र के मध्य हो रहे वार्तालाप का प्रकाशन है। वह आपके और मेरे लिए सदा प्रार्थना करता रहता है। संभवतः आप प्रार्थना करना भूल गए होंगे, परंतु वह नहीं भूलता है, वह हमारा मध्यस्थ है। परमेश्वर आपकी और मेरी प्रार्थना का उत्तर न दे, परंतु वह यीशु की प्रार्थना का उत्तर अवश्य देता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसके 41 और 42 पद में यीशु ने प्रार्थना की, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उसके कारण मैंने यह कहा है, जिससे कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। यीशु अपने लिए प्रार्थना करता है। अपने लिए प्रार्थना करना स्वार्थ नहीं है। हमें प्रार्थना करते समय प्रभु के समक्ष अपना मन और जीवन ग्रहण योग्य बनाना आवश्यक है। हमें स्वर्ग में अपना स्थान नाश होने से पहले लाना है, जैसे बजाने से पूर्व संगीत वादों का साधना होता है। उसी प्रकार हमें प्रार्थना करने से पूर्व अपने आप के लिए प्रार्थना करना आवश्यक है। यह स्वार्थ की प्रार्थना नहीं है। मेरे मित्रों, यदि आप कहीं पर प्रार्थना के लिए जा रहे हैं जहां पर कोई रोगी है या ऐसे दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोग हैं, तो आपको चाहिए कि पहले आप स्वयं के लिए प्रार्थना करें, अपने आप को तैयार करें और तब प्रार्थना के लिए जाएं, तो देखेंगे कि प्रभाव किस प्रकार से वहां करता है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो हो सकता है कि आप दुर्बल पड़ जाएं। लेकिन आइए अब हम आगे बढ़ेंगे और यूहन्ना 17 उसके 1 पद को पढ़ेंगे। लिखा है, यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वह घड़ी आ पहुंची, अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करे। यीशु ने ये बातें कही। अब सवाल है, कौन सी बातें? अध्याय 13 से 16 में हमने देखा कि अब यीशु शिष्यों से बातें करना समाप्त करके परमेश्वर से बात कर रहा है। वह परमेश्वर से शिष्यों के लिए वरन हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है, क्योंकि वह हमारा मध्यस्थ है। आप सोच रहे होंगे कि वह क्या प्रार्थना कर रहा था। यह उसकी प्रार्थना है। मेरे प्रिय मित्रों, पर्वतीय उपदेश में उसने जो प्रार्थना सिखाई, वह वास्तव में उसकी प्रार्थना नहीं थी। उस प्रार्थना में वह परमेश्वर को पिता कहकर संबोधित करता है, तो उसका अभिप्राय है कि वह हमारा पिता है जो हमारे नए जन्म के द्वारा है। परंतु जब वह स्वयं उसे पिता कहता है, तो उसका अभिप्राय त्रिएक परमेश्वर में अपने स्थान से है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय उसके 17 पद में वह मरियम से कहता है कि वह अभी पिता के पास नहीं गया, तब उसका अभिप्राय त्रिएकत्व से है। हमारे अपराधों को क्षमा कर, यह प्रार्थना यीशु की नहीं है, क्योंकि वह तो अपराध करता ही नहीं था, वह पापी नहीं था। इसी प्रकार अध्याय 17 की प्रार्थना उसकी प्रार्थना है, वह हमारी प्रार्थना नहीं हो सकती है। मेरे मित्रों, यीशु चलते चलते प्रार्थना कर रहा था। उसने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई हुई थी। मेरे कहने का अर्थ यह है कि हम कहीं भी किसी भी स्थिति में प्रार्थना कर सकते हैं। हमें सिर झुकाने की और आंखें बंद करके रुकने की आवश्यकता नहीं है। जहां भी हमें समय मिलता है हम प्रार्थना कर सकते हैं। इसके लिए कोई भी बंधन या रुकावट नहीं है। उसने कहा, हे पिता, वह घड़ी आ पहुंची है। अब यहां पर प्रश्न है, कौन सी घड़ी? वह समय जो अनादि से नियुक्त किया गया था। वह परमेश्वर का मेमना था जो जगत की नींव डालने से पूर्व बलि किया गया था। आपको स्मरण होगा कि यीशु ने काना नगर के विवाह उत्सव में अपनी माता मरियम से कहा था कि उसका समय नहीं आया है। इससे हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 2:3-4 पद में पाते हैं, उसका समय अब आ गया था कि वह हमारे पापों का दंड भोगे। वह समय आ गया था जब सृष्टि परमेश्वर के प्रेम उसकी मृत्यु में देखे, उसकी मोक्षक मृत्यु में। उसका यह समय उसकी मृत्यु के साथ समाप्त नहीं होगा, यह समय पुनरुत्थान तक चलेगा। जैसा कि उसने कहा है, हे पिता, वह घड़ी आ पहुंची है, अपने पुत्र की महिमा कर कि वह भी तेरी महिमा करे। मेरे प्रिय मित्र, प्रभु यीशु की मृत्यु यह सिद्ध करेगी कि परमेश्वर निर्दयी परमेश्वर नहीं है। वह एक प्रेमी परमेश्वर है जिसने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। जी हाँ, यीशु मरकर फिर से जी उठेगा और स्वर्ग में लौट जाएगा। उसे सबसे बड़ा नाम दिया जाएगा कि प्रत्येक घुटना उसके नाम पर झुकेंगे। अब प्रश्न यह है कि क्या आप उस नाम पर झुकने के लिए तैयार हैं? जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह आज भी मेरा और आपका उद्धार करता है, क्योंकि वह इस दुनिया में आपके लिए और मेरे लिए मरने के लिए आया। वह हमारे पापों को अपने ऊपर में ले लिया ताकि हमारी सजा वह खुद उठाए और हमारे बदले में मर जाए, ताकि फिर से जीवित हो और स्वर्ग पर जाए और हमें उद्धार का आनंद प्रदान करे। मेरे प्रिय मित्र, आज मेरे लिए और आपके लिए मौका है कि हम प्रभु यीशु मसीह के पास आए और अपने जीवन के हर एक पापों को उसके सामने में मान लें। और आप देखेंगे कि जब अपने पापों को आप मान लेते हैं, उसके सामने पश्चाताप करते हैं, अपने मनों को फिराते हैं, तो निश्चय जानिए कि वह प्रेमी परमेश्वर आपके पापों को क्षमा करता है और वह सामर्थ्य रखता है कि वह आपको क्षमा करे, आपके बीमारों से आपको आजादी दे, हर एक प्रकार के कष्ट जिसमें आप उलझे हुए हैं वह आपको उससे मुक्ति देना चाहता है। क्योंकि उसने स्वयं कहा है कि तुम मेरे नाम से जो कुछ भी मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा। और यह वही प्रभु है जो इस समय पिता परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है और मेरा और आपका आज भी वह मध्यस्थ है। जो कुछ हम उसके नाम से मांगते हैं पिता हमें देता है और वह देगा। क्या आज आप उसे कुछ मांगना चाहते हैं? क्या आज आप उसे अपना मध्यस्थ बनाना चाहते हैं? जी हाँ, आज ही आप निर्णय लीजिए ताकि प्रभु आपको आशीष दे सके, क्योंकि वचन में लिखा है कि प्रत्येक नाम उसके आगे घुटना टेकेंगे और उसका नाम सब नामों में श्रेष्ठ है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और आज के इस वचन के प्रकाशन में आएं और प्रभु से कहें, प्रभु आज मैं आपके निकटता में आता हूँ, मैं अपने घुटने टेकता हूँ, मैं अपने हृदय को आपके लिए खोलता हूँ, क्योंकि मैं जान गया हूँ कि आप ही परमेश्वर हैं, आप ही प्रभु हैं जो मुझे उद्धार दे सकते हैं, जो मुझे शांति दे सकते हैं। आज मैं संसार में भटकता हूँ शांति की खोज में, लेकिन आप मुझे वो शांति अभी इसी वक्त दे सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। दयालु और प्रेम पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिताजी आपके सामर्थ्य और जीवित वचन के लिए, जिसके माध्यम से आपने हमें फिर से एक बार स्मरण दिलाया है कि आप वही प्रभु हैं जो सदैव प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं। आप इस जगत में इसलिए आए ताकि हमें पाप के बंधन से मुक्ति दिलाएं। इतना ही नहीं, आप हमारे पापों को अपने ऊपर लेकर क्रूस पर मरने के लिए आए, ताकि आपकी मृत्यु के द्वारा हम उस भयानक मृत्यु से बच जाएं, उस नरक के कुंड से बच जाएं। आपने हमसे कहा, जो कोई मेरे पास आएगा मैं उसे कभी ना निकालूंगा। हाँ, हमारे जीवित पिता परमेश्वर, इस वक्त हम प्रार्थना करते हैं प्रत्येक श्रोता भाई बहनों के लिए जो इस समय आपके निकटता में प्रार्थना कर रहे हैं, आप उनके दिल और मन की बातों को जानते हैं, उनकी वेदनाओं को जानते हैं, आपने उनके आंखों के आंसुओं को देखा है, उनके कष्टों को देखा है, उनके तकलीफों को देखा है। कुछ भी ऐसी बात नहीं जो आपके सामने छिपी है। इसलिए प्रार्थना है कि आप उनकी सहायता करें, उनकी प्रार्थनाओं को सुन लें, उन्हें स्वीकार कर लें और फिर से उन्हें अपने निकटता में आने का सौभाग्य दें, उन्हें आप क्षमा करें। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हम सबकी प्रार्थनाओं को सुना है और हमारे हरेक श्रोता भाई बहनों को आपने आशीष दिया है। धन्यवाद के साथ प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
जब से मसीह को पाया है।